मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आज हम लोग जैन धर्म के अनुसार शुद्ध पंचमी पर्व एक साथ मिल बैठकर मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शुद्ध पंचमी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है। जब धीरे धीरे ज्ञान का ह्रास होने लगा, तब आचार्य भगवंतों को आगे आने वाले हम जैसे अज्ञानी जीवों के उपकार की चिंता हुई। पहले क्षयोपशम इतना होता था कि चीजें कंठाग्र हुआ करती थीं, सुन करके ही स्मरण में रख ली जाती थीं और दूसरे को बता दी जाती थीं, उन्हें लिपिबद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। लेकिन अल्प बुद्धि, अल्प बल और अल्प आयु वाले हम संसारी जीवों के उपकार के लिए जब आचार्य धर्मसेन स्वामी को चिंता हुई, तब उन्होंने मुनियों के सम्मुख अपना विचार रखा और दो श्रेष्ठ मुनियों को, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त था वह ज्ञान दिया। उस ज्ञान के देने की प्रक्रिया आज के दिन पूर्ण हुई, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए वह ज्ञान आज प्राप्त हुआ। वैसे तो हर तीर्थंकर उस अनादिकालीन परंपरा का ही प्रवर्तन करते हैं और वह अनादिकालीन श्रुत का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, लेकिन समय समय पर जैसे समुद्र का जल सबके पीने के योग्य नहीं होता, अगर सूर्य की किरणों से वह भाप के रूप में बदलकर बादलों से फिर बरसे तो हम सब जीवों के काम आता है, ऐसे ही अपार शुद्ध को हम कैसे धारण कर सकते हैं जब कोई ऋषि मुनि अपनी तपस्या से अपने अंदर उसे बादलों की तरह हम पर बरसाते हैं अमृत की तरह, तब हम उससे लाभान्वित हो पाते हैं। आज हमें वही लाभ प्राप्त हुआ, इसलिए हमने इस पर्व को, चूंकि पंचमी है इसलिए शुद्ध पंचमी ऐसा नाम देकर के मनाना प्रारंभ किया। आज हम सबके पास कम से कम इस भारत देश में ज्ञान की बातें जानने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन जीवन हम सबका अज्ञान में ही व्यतीत हो रहा है। ज्ञान की बातें जान लेने से कोई ज्ञानी हो जाता तो हम तो अभी तक ज्ञानी हो गए होते। वास्तव में ज्ञान वो है जो श्रद्धा और आचरण से समन्वित हो। हम उसे ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। जो ज्ञान हमारे जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, यह सच्ची श्रद्धा के साथ जो ज्ञान का अभ्यास किया जाता है और वह अभ्यास हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे आचरण को सदाचरण में तब्दील कर देता है। नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञान जीवन के रूपांतरण के लिए, या विद्या सविमुक्ते, विद्या वही है जो हमें इस संसार के प्रपंच से मुक्त कर सके, जन्म मरण की पीड़ा से बचा सके। आचार्य भगवंतों ने ऐसे ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान माना है। जेन रागा विरज्येज, जेन मित्ति पभासेज, जेन तत्त्वं विभुज्येज, तम नानम जिन शासन। जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान वही है जिससे कि हमारा राग द्वेष घटे, जिससे कि हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो, जिसके द्वारा हमें अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने की उत्सुकता उत्पन्न हो। ज्ञान वास्तव में वही है। आज हमारे पास ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान दूसरे के लिए थोड़ी सी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला तो है, लेकिन हमारे स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने में उतना सहयोगी नहीं हो पाता। क्या करें, अनादि काल का हमारा खोटा संस्कार है। अपार ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो संस्कार टूटता नहीं है। हमें करना क्या चाहिए ऐसे अवसर पर कि हम और ज्ञान हासिल करें और उस ज्ञान के अभ्यास से अपने खोटे संस्कारों को हटाने का, उनको नष्ट करने का पुरुषार्थ करें। इस ऐसे काल में जबकि सब तरफ अपने ही पतन के उपाय व्यक्ति कर रहा है, उस प्रपंच के बीच भी रह करके कुछ लोग अपने साथ साथ कल्याण के साथ साथ और जीवों के लिए उपकार के लिए भी जो कार्य करते हैं, हमें उनका भी ऐसे दिन स्मरण करना चाहिए। इसलिए अपन ने श्रुत पंचमी को दो तरह से, एक तो अपने पूर्व आचार्यों की परंपरा से अपने आत्म कल्याण के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और साथ ही जिन्होंने इस परंपरा में अपना थोड़ा भी बढ़ाने में योगदान दिया है उनके लिए स्मरण करने का भी अपन ने आज ऐसा अवसर प्राप्त किया है। हमने यहां किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं किया, हमने उसके व्यक्तित्व में जो श्रेष्ठताएं हैं उनका सम्मान किया है। श्रेष्ठताओं का सम्मान करना व्यक्ति के समूचे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का सम्मान करने की भारतीय परंपरा हमेशा से रही है। एक बात, छोटी सी घटना मेरे पढ़ने में आई थी कि भाई एक बार किसी साधु के ग्रंथ के लिए प्रकाशित करने को लोगों ने सोचा कि कुछ धनराशि इकट्ठी की जाए। धनराशि इकट्ठी भी हो गई, लेकिन उस वर्ष ऐसा हुआ कि पानी ही नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। वह ग्रंथ उस धनराशि से छप सकता था, लेकिन जो उस ग्रंथ के प्रमुख संपादक थे उन्होंने कहा कि यह राशि तो इस बार ग्रंथ नहीं छपने में काम आएगी, जो अकाल पीड़ित हैं उनके लिए दे दी जाए। दे दी गई। 5-7 वर्ष फिर राशि इकट्ठे करने में लग गए। दूसरी बार जब राशि इकट्ठी हुई तो उस वर्ष ऐसा संयोग बना कि बहुत बाढ़ आ गई और उस बार भी वह एकत्रित की गई शास्त्र के लिए राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए दी दी गई। तीसरी बार ऐसा संयोग बना कि सब तरफ खुशहाली थी और तब वह ग्रंथ छापा गया। तो ग्रंथ छपने पर उस पर तृतीय संस्करण लिखा गया, तब लोगों को बहुत ताजुब हुआ कि भाई ये तो पहला संस्करण है, इसके दो संस्करण कहां हैं? तो उन्होंने कहा वे दिखाई नहीं पड़ते, वे दो संस्करण तो अकाल और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए छाप करके बांट दिए गए हैं। वास्तव में हमारी परंपरा यही रही है, शास्त्र हमारे और प्राणी मात्र के कल्याण में कारण बनने के लिए है, हमें उनसे यही प्रेरणा मिलती है। वास्तव में शास्त्र का अभ्यास या शास्त्र का अध्ययन या शास्त्र के प्रति सम्मान तभी व्यक्त होता है जब हम शास्त्र में कही हुई बातों को भले ही 1% ही सही अपने जीवन में प्रकट करके और उन्हें स्वयं देखते हैं, स्वयं लाभ लेते हैं, जिससे और भी लोगों को मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्र के वेष्ठन हम आज बदलेंगे, लेकिन ध्यान रखें हमें भी अपने भीतर जो हमने राग द्वेष को से अपने आत्मा को आवेष्ठित करके रखा है उस वेष्टन को भी हमें हटा करके और उस स्वरूप का भी थोड़ा सा दर्शन करना चाहिए। यह आज जैसे महाराज ने भी कहा कि ऐसा संकल्प लेकर लौटें कि भाई जो हमारे उपकार के लिए बताइए षटखंडागम धरसेन आचार्य के दोनों शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ये ईशा की पहली शताब्दी में होने वाले महान आचार्य, उसके पहले के पहली ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में होने वाले दोनों महान आचार्यों ने षटखंडागम के 180 सूत्र लिखे, जिन पर की 9वीं-10वीं शताब्दी में और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी ने 16 वॉल्यूम में उसकी धबला टीका लिखी और यति वृषभ आचार्य के चूर्णी सूत्र और जय धबला उसके 16 वॉल्यूम और एक अकेले मोहिनी कर्म के सपना और उसके उपशम पर 7 वॉल्यूम महाबंध के ऐसे 39 वॉल्यूम में यह पूरा का पूरा हमारा आगम अभी भी सुरक्षित है। जो शेष बचा था अंग प्रविष्ट तो शेष बचा नहीं, अंग बाह्य जो थे वे ही इस तरह हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। हमें इसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए। यह तो हमारा सौभाग्य है कि ये हस्तलिखित ताड़ पत्तियां और मूठभद्री में दर्शनार्थ रखी रहती थी, धीरे धीरे वहां से कुछ लोगों ने और पंचकल्याणक ना करा करके और उस धनराशि से इन शास्त्रों को और छापा खाने में इनको प्रिंट कराने और इनका ठीक ठीक संशोधन कर और उनको संपादित करके प्रकाशन में लाए और फिर प्रकाशन में आ जाने के बाद भी किताबें प्रकाशकों के यहाँ रखी रहती थी। तब फिर 1980 में मैं तो उस समय दीक्षित होके 2 महीने ही हुए थे, तब आचार्य महाराज की कृपा से पहली षटखंडागम वाचना का शिविर और महा बड़े बड़े पंडितों के सामने और 1980 में और यह महावीर जयंती के अवसर पर और आयोजित हुआ। उसके बाद ये क्रम 1987 तक निरंतर चलता रहा। फिर विद्वानों का धीरे धीरे उनका समय पूर्ण हो गया तो फिर अब आचार्य श्री स्वयं ही संघ में और इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं। यह ग्रंथ हम सब के लिए तो दुरु हैं, लेकिन अगर किसी श्री गुरु के मुख से हम इनके लिए सुनने का प्रयत्न करें तो हमारे लिए यह समझ में आते हैं और हमारे कल्याण में कारण बनते हैं। अपन को आज के दिन इतना ही संकल्प करना चाहिए, घर में एक छोटा सा कोना इस बात का भी होना चाहिए जहां बैठ करके हम इन ग्रंथों को अध्ययन कर सकें। हमारे 24 घंटे में थोड़ा सा समय इस बात का होना चाहिए कि हमारे उपकार के लिए जो लिखा गया है उसे हम कम से कम एक बार देख तो लें, उसे एक बार मुख से उच्चारण कर लें, वह कान से सुन लें, आंखों से देख लें। भैया 2 लाइनें पढ़ो लेकिन वे 2 लाइनें भी पता नहीं कब किसके जीवन को परिवर्तित कर दें। हमने आपको वह घटना सुनाई थी कि एक व्यक्ति को मैंने छोटी सी बच्चों की किताब दी थी वचनामृत की, उसमें से एक वचनामृत पढ़ करके उनका जीवन बदल गया। इतना सा पढ़ा था उसमें कि जिसने सुबह उगता हुआ सूरज नहीं देखा उसके जीवन में सूरज कभी नहीं उगता, इतनी सी बात। और वे सुबह 8 बजे उठ के सोकर उठते थे। उनने कहा, अरे मैंने तो जिंदगी निकल गई 55 साल, उगता सूरज ही नहीं देखा, मेरे जीवन में सूरज कभी नहीं उगेगा। तब तो मुझे रोज सुबह से उठकर पहले जिनालय दर्शन करने जाना चाहिए, पूजा का नियम ले लिया, जीवन परिवर्तित हो गया। पता नहीं कौन सी बात। और हमको तो अपनी दादी की अलमारी साफ करने के 10 पैसे मिलते थे, सो हम लालच में साफ करते थे। हाँ, दादी देती थी कि देखो हमारी अलमारी साफ करेगा जो, उसको 10 पैसे देंगे। 10 पैसे बहुत होते थे 1960 के अंदर, 61 के अंदर, तो साफ कर दी और 10 पैसे मिले। और उसमें क्या होता था, छोटी मोटी कोई ना कोई गुटका चलते थे, इतनी सी किताबें तो बड़ी सुंदर लगती थी, पॉकेट बुक जैसी। तो अपन पूछ लेते थे कि दादी ये हम ले लें, तो वो तो चाहती ये थी कि ले तो ले, खोलो तो पढ़ो तो कछु, ऐसे कहें तो तुम भाग जाओ न पढ़ो। तो वो किताब अपन ले जाते थे, बस्ते में धरे फिरते थे, अपनी टेबल पर कभी खोल के देख लेते थे, कब प्रभुपद पावन की विनती याद हो गई अपने को पता ही नहीं लगा। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है, किसके परिणाम स्वरूप, उन्होंने प्रेरणा दी, ग्रंथ हमारे पास है तो हमने खोल करके देखा। कब याद किया ये नहीं मालूम, लेकिन खोल के देखते देखते और वह याद हो गया हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी। ऐसा ही भैया, घर की चाबी तो लड़के को सौंपते हो सो उससे तो संसार का ताला खुलता है सो खुले, लेकिन अपने कल्याण के ताला खोलने के लिए एक चाबी तो दो, एक ग्रंथ तो दो। अपनी बेटी के लिए बहुत सारा वस्त्राभूषण देते हैं सो दो, कोई बात नहीं है, वो तो हमारा अपना प्रेम है, वो तो हमारा वात्सल्य है, लेकिन कभी कभी उसके जीवन में और विचरण आ जावे तो उसे कौन संभालेगा। तो एक छोटा सा धर्म ग्रंथ भी दो कि जब कभी घबराने लगो इस संसार के प्रपंच से तो फिर यह सहारा बनेगा। ऐसा विचार करके इन जिनवाणी का अपन को स्वयं अध्ययन करना चाहिए, दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। अपन नहीं पढ़ पाते भैया, दूसरा जो पढ़ता है सो अपने पास पैसा है तो अपन खरीद के दूसरे को देवे। जी प्रवृत्ति भी अपने यहाँ पर कम हो गई, अपन को तो कोई दे देवे फ्री में, अरे वो तो दे देगा सो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी ने हमको ऐसे ही दे दिया तो हम उसका उपकार माने और अपन भी ऐसा उपकार करें, अपन भी एक ठुल्ले करके दूसरे को दे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, अपन ने नहीं खरीदा, दूसरे ने हमारे लिए खरीदा, हमने दूसरे के लिए खरीदा, अपने लिए तो सब खरीदते, तो ऐसा कर लो, अगर अपने लिए खरीदने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम अपने लिए ना खरीद के दूसरे के लिए खरीद के देंगे, अपने पैसे का भी सदुपयोग होगा और दूसरे का। सबसे बड़ा भला ये होता है, हम तो बच्चों को भी किताब दे देते कि ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ तुम पढ़ना है इसको, फिर पढ़ के आते तो हम पूछते कि क्या पढ़ा, इसमें कौन सी चीज अच्छी लगी, तो ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी। अब 3 बातें बता दी उनने, हमने किताब बिना पढ़े जान ली कि मैं 3 बातें अच्छी हैं। अब बताओ लाभ हुआ कि नहीं हुआ, देने से लाभ ही होता है, अपन को लगता है कि ये हमारा चला गया। ज्ञान और प्रेम दो ही चीजें हैं जो कितनों भी बांटो अपनी बड़ी याद कमती नहीं हो। आज का दिन इसी के लिए है, हम ज्ञानवान का भी सम्मान करें, ज्ञान का भी सम्मान करें, और सबसे बड़ा सम्मान तो उसका ये है कि हम भी स्वयं उस ज्ञान को हासिल करके और उसको और लोगों के लिए भी दें, अपना भी उपकार करें और दूसरे का भी करें। एक छोटी सी घटना और सुनाई देते, छोटी तो नहीं है, उसमें तो 10-15 मिनट लगेंगे। हाँ चलेगा तो ठीक है, अपने को क्या दिक्कत, फिर दोपहर में भी ऐसे ही कहोगे। आज तो लेकिन अपन दोपहर में बिल्कुल समय से 4:30 बजे खत्म कर लेंगे, सरोज कुमार जी तो कर देंगे पूरा, 3:15 से शुरू करके 4:30 बजे तक। क्या हुआ, एक सदाशिव नाम का युवक था, वह ये उपनिषद की प्रसिद्ध घटना है, वो गुरु के पास में अध्ययन करने के लिए गया, पिता ने उसे भेजा। पहले गुरुकुल की पद्धति थी, पिता भेज देते थे बच्चे को, 12-15 वर्ष तक अध्ययन करता था और गुरु से शिक्षा लेकर के आता था। उसके साथ में क्या मिलता था, शिक्षा के साथ में विनय मिलती थी, क्योंकि दोनों का जोड़ा है ज्ञान और विनय का। अगर इनमें से एक रहे तो अपने अकल्याण करेगा, अकेला ज्ञान बिना विनय का जीव का उद्धार भी नहीं करता और जिसके दूसरे का तो उद्धार का सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि उसने सारा ज्ञान तो हासिल किया 12-15 वर्ष, पिता इंतजार करते रहे कि ज्ञान लेके लौटेगा, जब वो लौटा तो ज्ञान की जगह अकल लेकर के लौटा। अपन भी जब ज्ञान दो बातें धर्म की मालूम पड़ जाती है, अच्छी मालूम पड़ जाती तो थोड़े और लोगों को क्या समझने लगते, क्षुद्र समझने लगते, अरे जी का जाने ही अज्ञानी है हमें मालूम, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अपन भी तो अज्ञानी थे, सपन को दो बातें मिल गई, बड़ा सौभाग्य और विनय, इसको ही बता दी मैं दो बातें। हमें दूसरी घटना याद आ गई, अब बड़ी मुश्किल, और वो उसका कुछ भी नहीं, एक एक महापुरुष थे, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, उनको उनके गुरु जी ने कहा कि जी मंत्र अकेले में पढ़ना, कोई से बताना नहीं, और फिर बाद में ये भी कहा कि जी बहुत कल्याणकारी है, जो पढ़े सो को कल्याण हो जाए, सो उनने छत पे से जोर जोर से पढ़ वो शुरू कर दो। सो गुरु जी ने कि क्या हमने जाए कही थी तुमसे अकेले में पढ़ियो, कहले आपने जावी तो कही थी कि सबको कल्याण हो जाए, सो हमने सोची हम अकेले का जो जो सुने सबको हो जाए, सो सब जोर से पढ़ दिया उन्होंने। भाई ऐसा भाव, तो गुरु जी ने कहा तुम्हारे लिए तो यह अब सीक्रेट नहीं है, तुम तो इस तरह की भावना से पढ़ रहे हो इसलिए यह मंत्र तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा। वहां पर भी यही आशय था कि हमारे अंदर अगर ज्ञान हासिल हम करते हैं तो सपर कल्याण के लिए है। ज्ञान का तो लक्षण ही है कि जो सपर प्रकाशक है वही सम्यक ज्ञान है। हम ऐसा ज्ञान हासिल करें जिससे दूसरे का और अपना भी उपकार हो। पर उसको आ गई अकड़ अपने ज्ञान की, सो पिताजी को भी ठीक से नहीं देखा, पिताजी दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, सो उनको एक तरफ बिना देखे और ऊपर सीढ़ियां चढ़ता गया, पिता पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आज भी तो ऐसा ही है, नहीं है ऐसा ही, अब भैया जैसी कर रहे उनसे करने पड़े, पिताजी को भी वैसे ही करने पड़त के भैया कह रहे, भैया मतलब लड़का आपका समझ रहे थे। पहले तो पहले जमाने में तो अपने बच्चे बेटे को यही कहते क्या भैया हुआ है, तुम कहां हुआ है, आ गए ठीक है, ये ऐसे ही शब्द था। अब की अलग है परंपरा, अब की खराब नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पुरानी भी अच्छी थी ये कह रहे हैं। अब खराब कैसे कह सकते, पुरानी परंपरा भी अच्छी थी। तो वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं पिता और कह रहे हैं उससे कि क्या तुम सब ज्ञान हासिल करके आ गए, तो पीछे मुड़ के ऐसे देखता है पिता को जैसे कोई अपन कीड़े मकोड़े को नहीं देखते ऐसा, हाँ बड़े हिकारत की नजर से कि जैसे बहुत कोई नहीं हो, और कुछ बोलता नहीं है, सारे से ही ऐसा शो करता कि हाँ सब प्राप्त करके आए। पिता बड़े विनम्रता से कहते क्या तुमने वह सब जान लिया जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष न रहा हो, तुमने वह जान लिया क्या। अब मुश्किल पड़ी, अगर ज्ञानवान व्यक्ति को कोई इस तरह की बात कह देवे तो उसका अहंकार प्रकट होने लगता, वो कहता कि मेरे गुरु ने तो वह चीज मुझे नहीं पढ़ाई जिसके जानने के बाद और कुछ जानना शेष न रहे, अभी जाता हूं गुरु जी को देखता हूं, अब देखो, और फौरन उल्टे पैर आग जा करके और गुरु जी के पास सीधा जाके खड़ा हो गया कि मेरे पिता पूछते हैं कि तुमने वह चीज जान ली जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष न रहे, वो चीज मुझे क्यों नहीं बताई आपने। उन्होंने कहा कि वो ट्रांसफरेबल नहीं है, एक्सचेंजेबल नहीं है, उसमें हम शेयर नहीं कर सकते, वो तुम्हें खुद प्राप्त करना पड़ेगी। तो प्राप्ति का उपाय बता सकते, उपाय है आश्रम की 500 गायें ले जाओ, निर्जन जंगल में रहना, जब वे 1000 हो जाएं तब वापस लौट आ जाना, तुम्हें वो चीज प्राप्त हो जाएगी जिसके प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। बड़ा अजीब सा गणित, चलो भाई 500 गायें और ज्ञान का क्या संबंध, लेकिन 500 गायें लेकर के ऐसे निर्जन जंगल में जहां अपने अलावा कोई भी नहीं है, गायें हैं और वह सदाशिव है और रह रहा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 12 वर्ष गुजर गए, एक दिन घट कहानी में लिखा है कि उन्होंने स्वयं आकर के कहा कि लौट चलो सदा, अब हम 1000 हो गए। लेकिन सदाशिव तो सब कुछ भूल चुका था, वहां कोई कषाय करने वाला वहां तो कुछ था नहीं, गायों की आंखों में सहजता थी, सरलता थी, संवेदनशीलता थी, बस यही चीजें वह रोज देखता था, सो उसके मन में भी यह चीज आना शुरू हो गई, सारी कठिनता सारी असहजता और यह जो संवेदनहीनता है वह धीरे धीरे नष्ट हो गई। अब सदाशिव चुपचाप चला जा रहा है, आश्रम के निकट पहुंचते पहुंचते आश्रम के और शिष्यों ने देखा, जबकि सदाशिव हजार गायें पीछे पीछे आ रही और सदाशिव आगे आ रहा है, माथा झुका हुआ है लेकिन चमक रहा है माथा, तो गुरुजी को जाकर के कहा कि सदाशिव लौट आया। पहली बार गुरुजी किसी शिष्य के सम्मान के लिए उठ करके खड़े हुए बाहर तक आए और सब शिष्यों से कहा कि ये मत कहो कि 1000 गायें और सदाशिव आ रहा है, इतना ही कहो कि 1001 गायें आ रही हैं। 1000 गायें और सदाशिव आ रहा है ये मत कहो, 1001 गायें आ रही हैं। अब इसमें भी उतनी ही सहजता सरलता और संवेदनशीलता आ गई है, इसने वो प्राप्त कर लिया जिसके प्राप्त करने के बाद अब संसार में कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहा। आकर के उसने जो कल तक गुरुजी के सामने ऐसे खड़े होकर पूछता था कि बताओ वो क्या चीज है, आज गुरुजी को प्रणाम करके पैर छूता है और विनय उसके अंदर अत्यंत है। गुरुजी आशीर्वाद देके भेज देते हैं कि जाओ, पिता इंतजार कर रहे होंगे, अब तो वो मरणासन्न होंगे, उन्हें कहो कि तुमने वो चीज प्राप्त कर ली। और सचमुच जब पहुंचता है तो पिता इंतजार कर रहे थे। पिता तो वैसे हर समय यही इंतजार करते कि मेरा बेटा ऐसा ज्ञान हासिल करके लौटे जिससे उसका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। आज की बात अलग है कि दो पैसा कमा लेवे की विद्या लेकर लौटे नहीं, लेकिन दो पैसा कमाने की विद्या के साथ साथ इतना और जोड़ लो भैया, उसमें क्या अपने और दूसरे के कल्याण के लिए कारण बने, ऐसी विद्या लेकर के लौटे। तो जैसे ही सदाशिव को देखा, पिता ने उठने की कोशिश की, सदाशिव ने उन्हें पुनः लिटा दिया, माथा उनके चरणों पर रख दिया। पिता एक उस समय उनके आंसू आए थे जब सदाशिव अकड़ करके ज्ञान प्राप्त करके लौटा था, और एक अब आए आंसू जब वो वास्तव में ज्ञान के साथ जो सरलता है सहजता है संवेदनशीलता है वो लेकर के लौटा है। भाई ये शुद्ध पंचमी और ये सब विद्वान हमें यही सलाह देने के लिए आते हैं कि हम अपने जीवन में उस ज्ञान के द्वारा सहजता सरलता और संवेदनशीलता लाएं, ताकि अपना और प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। ऐसे ज्ञान को हम प्राप्त करें जो कि सफर कल्याणक हो, अपने और दूसरे जीवन को अच्छा बनाने में निमित्त बने। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कानो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चे। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, चरु सुदीप सुधूप पलार्ग गई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गहे जिन वास मगम।
अच्छा पड़ेगी उस मैंने चंद्रमोहन जी को तकलीफ दी, किताब मंगवाई कि वो उस पंक्ति को दुरवाया कि वो भाव साम्य है। देखिए ग्रेट मैन थिंक अलाइक, उसी तरह कई बार कभी लोग भी समान सोच रखते हैं, एक भाव दूसरे के मन में भी आता है, लेकिन अभिव्यक्ति का कलर, उसका फ्लेवर, उसकी शब्दावली, उसका डिक्शन, ये सब अलग होता है। अब वो महाराज जी स्वयं सुनाएंगे तब आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्यों हेमंत भाई से कहा था। अब मैं एक व्यवधान हूं व्यवधान हूं मतलब आदरणीय मुनिद्वय के रचना पाठ के बीच में। आप अगर व्यवधान चाहते हो तो वैसा कहें मुझे बहुत खुशी है कि आप व्यवधान प्रिय है मैं आपको करीब 4-4.5 मिनट में इतनी ही कविताएं सुना दूंगा, छोटी छोटी सी। ये बहुत ही अच्छा है, इस संध्या का एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें आपने तरल शीलचंद जी और हेमंत से इतनी अच्छी रचनाएं सुनी। ये छोटी छोटी सी टिप्पणियां हैं, जैसे वो बहुत लंबी कविता है, वो आज के वो बहुत बड़ी कविता है, और किसी वो नहीं, वो लंबा बहुत, फिर आप कहेंगे व्यवधान पसंद नहीं, अभी तो आप व्यवधान पसंद कर रहे हैं, लंबी वो आपसे कह रहे हैं टाइम वेस्ट, मतलब मुझसे नहीं। अच्छा, ये महाराज जी के कोई नए गुरु नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए, नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा और सारे महात्माओं ने कहा है कि अगर साधन अपवित्र हुआ तो साध्य भी अपवित्र हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी है, नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए। मेरे ये विचार सुन चौधरी उत्तेजित हो गया, मेरे ये विचार सुन चौधरी उत्तेजित हो गया। गांधी जी ने कहा होगा तब उत्तेजित नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने तो कहीं पर रावलपिंडी में या दिल्ली में कहा होगा, मैंने तो उसके सामने कहा, इसलिए वो उत्तेजित हो गया। नंबर दो की कमाई से मंदिर नहीं बनना चाहिए, मेरे ये विचार सुन चौधरी उत्तेजित हो गया। बोला, भाई साहब, नंबर दो का पैसा कमाना कोई सरल काम नहीं है, सारी आंखों से बचाकर, सारे कानूनों से छिपाकर, गुपचुप में, चुपचुप में, करिश्मे से कमा पाता है कोई नंबर दो। फिर वो मेरी ओर हिकारत से कुछ इस तरह देखता रहा, मानो कह रहा हो ये दो कौड़ी का मास्टर क्या खाक समझेगा क्या होता है नंबर दो। फिर बोला, आप तो बोला हाथ मार साहब, बस उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर दो, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। देखिए मनुष्य का मन है, मुनि महाराजों के सामने देखा, बड़ी बड़ी कार वाले आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं और चरण छूते हैं, चरण छूते हैं, चरण छूते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। लगता है कि अपन भी बन जा, अपने पास भी आएंगे ऐसा। देखिए इसको अच्छा माने या बुरा, मैं भाव बता रहा हूं। मन में तरह तरह के भाव आते हैं, संचारी भाव है, ये आते हैं चले जाते हैं। महाराज जी हमारे अंदर आप जैसा नहीं कि भाव आकर रुक जाए और हो ही जाए। आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसा ही एक बार एक भाव आया कि अपन मुनि बन जाओ। तो उस समय की एक टिप्पणी है, उस क्या किया, सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा। सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा, बाल तो नहीं नोच पाया, बहुत कठिन है, बाल तो नहीं नोच पाया, हाथों की अंजुरी में खाने की कोशिश की, हाथों की अंजुरी में खाने की कोशिश की, ध्यान की कोशिश में था, ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में आई, यहां वहां कुछ उड़ी, यहां वहां कुछ टकराई और फिर बाहर पुर्र से उड़ गई। शायद वह चिड़िया मुझे बतलाने आई थी कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। शायद वो मुझे बताने आए थे कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती, उसके लिए तो निकल पड़ो, कमरे के अंदर नहीं होगा, ये कोई रिहर्सल का मामला नहीं है। घर में कुत्ते न घुसें, इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा। घर में कुत्ते न घुसें, इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा, और घर में आदमी न घुसें, इसलिए दूसरे ने एक कुत्ता रख छोड़ा। मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे यहां कोई नहीं घुसा, फिर भी मेरे यहां कोई नहीं घुसा। घुसने वालों ने सोचा होगा कि ऐसे के घर में भी क्या घुसना जिसके दरवाजे पर न आदमी है न कुत्ता। ये अंतिम एक छोटी सी, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को बड़ी दया आई। कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, कड़कड़ाती ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को बड़ी दया आई, बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक लादू। बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, एक लादू। लादे, साधु ने कहा अगर मेरे नाप का मिल जाए, लादे, साधु ने कहा अगर मेरे नाप का मिल जाए। साधु के नाप का पाजामा लेने के लिए गई चिड़िया अभी तक लौटी नहीं है। मैं परमादरणीय भव्य सागर जी से निवेदन कर रहा हूं। भव्य सागर जी का मामला यह है कि कई बार वो गद्य बोलते हैं तो कविता लगता है, कई बार कविता बोलते हैं तो गद्य लगता है। इसलिए तो जो भी बोलेंगे वो कविता ही होगा क्योंकि वे अत्यंत निर्मल हृदय के व्यक्ति, और निर्मलता जब शब्दों में आती है तब वो कविता बन जाती है। आदरणीय भगवत सागर जी,
भवसागर से, भवसागर से घूमत घूमत इस धरनी पर जन्म लिया, भवसागर से घूमत घूमत इस जननी धरनी पर जन्म लिया, और ऐसी करनी करो यहाँ पर बुरे काम से सदा बचो। ऊंचा कुल और धन और धन धान्य शरीर निरोग मिला, ऊंचा कुल और धर्म ध्यान धान और धान शरीर निरोग मिला, और करना हो उपकार करो तो सब जीवों पर दया करो। क्षेत्र क्षेत्र और नगर नगर और ग्राम ग्राम से गमन किया, क्षेत्र क्षेत्र और नगर नगर और ग्राम ग्राम से गमन किया, और आचार्य श्री विद्यासागर ने कैसा आशीर्वाद मुझे दिया। पूर्व कर्म का उदय अनोखा, विद्यापन में आन मिला, और श्री मुनि राज क्षमा सागर ने इस दुनिया में संग किया। ना मैं कभी कविता करता, ना ख्याति को चाहता, मैं तो अपने जीवन पर चलने की बात बताता, सभी प्राणी स्वयं का सुख व दुख सहते हैं, काम गैरों के आए उसे इंसान कहते हैं, जो काम दूसरों के नियाब है वो इंसान है उसे इंसान कहते हैं। सतत दिन रात जुट कर पेट तो सर जीव भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहती है। कोई भी चोट लगने पर घाव सब अपना सहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबरा है उसे इंसान कहती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी बताती है, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहती है, बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज अपन कविता हम जाइया भैया।
अरे बहुत बहुत आभारी हैं हम आदरणीय भव्य सागर जी महाराज के, और अब मैं परम पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी से आग्रह करूंगा, और उसके पहले मैं आप सबको ये पुस्तक का कवर तो कम से कम यहां से दिखा ही सकता हूं। ये मुनिश्री क्षमा सागर जी की कविताओं का तीसरा काव्य संग्रह है और ये काव्य संग्रह जिसका नाम है अपना घर, यह देश के सुप्रतिष्ठ प्रकाशन संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है अपना घर। इसके पहले मुनिश्री का पहला कविता संग्रह पगडंडी सूरज तक और दूसरा कविता संग्रह मुनिश्री क्षमा सागर की कविताएं, ये प्रकाशित हो चुका है। आप अगर मुनिश्री की कविताएं देखना चाहें तो इन संग्रहों में आपको मिल सकती हैं। मैं परम श्रद्धे मुनिश्री से आग्रह कर रहा हूं कि अपनी रचनाओं से हमें कृतार्थ करें।
भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य महाराज के चरणों में मैंने कुछ भाव व्यक्त किए थे, वहां से शुरू करता हूं। दीप उनका, रोशनी उनकी, दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूं, रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का मैं चल रहा हूं।
वाह 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 वाह।
दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूं, रास्ते उनके, सहारा भी उन्हीं का मैं चल रहा हूं, सांस उनकी, हर प्राण उनके, सांस उनकी, हर प्राण उनके, मैं जी रहा हूं, रोशनी उनकी, दीप उनका, मैं जल रहा हूं। दूसरी जो आचार्य महाराज के लिए लिखी थी वो अंत में सुनाऊंगा, उसके पहले जो सरोज कुमार जी याद दिला रहे थे, ये भी ग्रह परित्याग के महीने दो महीने बाद लिखी थी, सन 1980 में। सबको छोड़कर मैं अपने को खोजने निकला, सबको छोड़कर मैं अपने को खोजने निकला, लोगों ने इसे मेरी अकर्मण्यता और पलायन कहा, मेरा रास्ते पर निश्चल निरावरित चलना लोगों को पागलपन लगा, मेरा रास्ते पर निश्चल निरावरित चलना लोगों को पागलपन लगा, मेरी सर्व मैत्री को लोगों ने अहंकार कहा, मेरी सर्व मैत्री को लोगों ने अहंकार कहा, मेरी सरलता को लोगों ने कायरता कहकर खूब मजाक बनाया। मैं चुप रहा और चुपचाप चलता रहा, चलते चलते अपने में खो गया, नहीं रहा, चलते चलते अपने में खो गया, नहीं रहा, तब से लोगों ने मुझे देवता कहा।
वाह वाह वाह।
तब से फिर लोगों ने मुझे देवता कहा, अब मैं उनका बनाया पत्थर का देवता, अब मैं उनका बनाया पत्थर का देवता हूं। अचरज की बात है कि जीते जी मुझ आदमी में जो देवत्व किसी को नहीं दिखा, उसे आज मेरी प्रतिमा में कैसे देख लिया।
वाह 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 वाह।
ये उससे मिलता जुलता था। भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा, भगवान कितना बड़ा है, मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा, तब सचमुच मुझे भी लगा कि जितना जिसके जीवन में समा जाए भगवान उतना ही बड़ा।
वाह 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 वाह।
जिसके जीवन में जितना समा जाए भगवान उतना ही बड़ा। मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो, मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो, आकाश ने मुस्कुराकर कहा तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो, आकाश ने मुस्कुराकर कहा तुम तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो, मैंने सागर से कहा तुम खूब गहरे हो, मैंने सागर से कहा कि तुम खूब गहरे हो, सागर ने भी लहराकर कहा भाई तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो, सागर ने भी लहराकर कहा कि तुम मुझसे भी अधिक गहरे हो, मैंने सूरज से कहा सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो, मैंने सूरज से कहा कि सूरज दादा तुम बहुत तेजस्वी हो, सूरज ने हंसकर कहा भाई तुम मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी, सूरज ने भी कहा कि तुम मुझसे भी कई गुने तेजस्वी हो, फिर मैंने आदमी से कहा कि भाई तुम महान हो, फिर मैंने आदमी से कहा कि भाई तुम महान हो, आदमी झट से बोला तुम ठीक कहते हो।
वाह 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 वाह।
इसने कहा तुम ठीक कह रहे
हो। वाह वाह।
चिड़िया आई उसके करीब,
इनकी लिखी नहीं,
एक चिड़िया और आई। चिड़िया आई उसके करीब, एक चिड़िया और आई, चहचहाई, सारा आकाश भर गया है चिड़ियों की चहचहाट से। चिड़िया आई उसके करीब, एक चिड़िया और आई, चहचहाई, सारा आकाश भर गया चिड़ियों की चहचहाट से। जीवन का रीतापन भर नहीं पाया आदमी परस्पर मधुर संवाद से।
वाह 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 वाह।
जीवन का रीतापन भर नहीं पाया आदमी परस्पर संवाद से। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। सागर में जल खेतों में दाना बहुत था, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना समा जाए जीवन जिसमें अपना। संसार संसार बहुत बड़ा था, चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सवाया। मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करे। मैंने कई बार उससे कहा कि सफेद पर सफेद से मत लिखा करे, इस तरह लिखना कहां दिखता है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है। उसका कहना है कि सवाल लिखने का है, दिखने का ख्याल एकदम झूठा है, और फिर सफेद पर काला लिखना अच्छा भी तो नहीं लगता। और फिर सफेद पर काला लिखना अच्छा भी तो नहीं लगता। सफेद पर तो सफेद ही लिखा जाता है, तब कितना भी लिखो कागज एकदम सफेद रहा है।
वाह वाह वाह।
यात्रा पर निकला हूं, यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे कहां तक जाना। अब तो चतुर्मास आने वाला है तो बड़ा फेस करना पड़ता है कहां हो रहा। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे कहां तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूं कि किससे कहूं कहीं तो नहीं जाना। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे कहां तक जाना है। मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूं कि अब किससे कहूं कहीं तो नहीं जाना। मुझे इस बार अपने से चलकर अपने तक आना।
क्या बात है साहब। वाह 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 वाह।
उसने कुछ नहीं जोड़ा, उसने कुछ नहीं जोड़ा। लोग तो बताते कि पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। उसने कुछ नहीं जोड़ा, लोग तो बताते हैं कि पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। पर जिंदगी भर अपना सब देता रहा, दे देकर सबको जोड़ता रहा। लोग कहते उसने कुछ नहीं जोड़ा।
वाह 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 वाह।
हम विदिशा में थे तो उस समय वहां मंदिर में बहुत अच्छा फानूस लगा हुआ था, बहुत डेलिकेट उसमें काम था। चिड़िया जाकर उसमें बैठ गई, अब वो पूरा हिल गया। मुझे लगा कि गिर ना जाए, नहीं तो लोग कहेंगे महाराज बैठे थे और गिर गए। उपद्रव विशेष कछु अतिशय हो तो बात अलग, जब टूट फूट हो तो और उपद्रव। पर वो चिड़िया उसमें बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने लिखा कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती है। कांच के नाजुक फानूस पर बैठी चिड़िया बहुत भोली और अच्छी लगती है, पर मन डरता है कि कहीं फानूस गिरकर टूट ना जाए, कि कहीं फानूस गिरकर टूट ना जाए, कि कहीं चिड़िया उड़ ना जाए। दो में से एक तो कुछ हो। हम सबकी सब बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, हम सबकी सब बातें चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। लोग कहते सब स्वीकार करते जाना कमजोरी है, लोग कहते कि सब बातें स्वीकार करते जाना कमजोरी है, सो हम उनकी इस बात को भी स्वीकार कर लोग कहते कि सब बातें स्वीकार करते जाना कमजोरी है, सो हम उनकी इस बात को भी स्वीकार कर लेते। क्या करें, हम कमजोर हैं, हमसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता।
वाह वाह वाह।
हम लोग देने लेने का, सुनने सुनाने का रोज उपक्रम करते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनाने वाले का महत्व ज्यादा है, हैं? देने वाले का महत्व ज्यादा है। पर देखो, कभी ऐसा हो कि देने का मन हो और लेने वाला कोई करीब ना हो, कभी ऐसा हो कि देने का मन हो और लेने वाला कोई करीब ना हो, कभी हम कुछ कहना चाहें और सुनने वाला कोई करीब ना हो, और सुनने वाला कोई करीब ना हो, तब मालूम पड़ता है कि देने और सुनाने वाले से लेने और सुनने वाला ज्यादा।
वाह 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 वाह।
ये चीज जो है, मेरे साथ दो बार ऐसी घटना घटी कि अपन सबके लिए अच्छा करो भैया, लेकिन अपना पुण्य पाप तो अपने साथ में है, तो धक्का लगने में देर थोड़ी लगती है, कोई भी दे सकता है। अब उसको अपन क्या खोट देवे कि तुमने क्यों धक्का दिया, हमने तो तुम्हारे लिए सहारा दिया और तुम ही धक्का दे रहे। तो वो धक्का उसने नहीं दिया, अपने पाप कर्मों ने दिया, पर उस समय कैसा लगने लगता, उस समय तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया करने का मन होता है, तब वो प्रतिक्रिया कैसी हो, इसके लिए कुछ लाइनें लिखी थी। मैं तो लोगों के लिए एक सीढ़ी हूं, मैं तो लोगों के लिए एक सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊपर पहुंचना है, मैं तो लोगों के लिए एक सीढ़ी हूं जिस पर पैर रखकर उन्हें ऊपर पहुंचना है। तब सीढ़ी का क्या अधिकार कि वो सोचे किसने धीरे से पैर रखा और कौन उसे कुचलता चला।
वाह 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 वाह।
मैं तो लोगों के लिए
सीढ़ी।
अब मेरे
मान जी वो अपना घर और वो शीशा।
हाँ, वो अपना घर वाली सुनाता हूँ और फिर आचार्य श्री के लिए वो समर्पित। उस पांच बजे कहा था तो पांच ही बजा,
तो चार ही हुए महाराज जी, बहुत कम।
मेरे रोज संचालन करते हैं तो उनकी बात भी रह जाए, हमसे कम के पांच की गई थी, सात मिनट बाकी हैं। चिड़िया तुम आती हो, मुझे अपने इस पूरे में जो अच्छा लगता है, ये बाकी चीजें तो ठीक हैं, आज के समय में जैसी परिस्थिति है उसमें तो ये चीज बहुत कम देखने में आती है, पर अभी भी बाकी है। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो।
वाह 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 वाह।
मैं जानता हूँ तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा
लगता है। वाह 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 वाह।
पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है। सचमुच तुम्हारे घर ने मेरे घर को अपना घर बना दिया। ये उसका भाव था। और आचार्य जी के लिए जो मैंने लिखा था वो कविता रूप में भी है और गेय भी है, उसको मैं सुना देता हूं। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, जो सांस बन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा, वो देवता मैं बंधा जिससे मुझे जो, मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश नौ देता रहा वो देवता जो जो तिसा मेरे हृदय में, जो मूर्ति में कई रूप धरता वो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो दूर रहकर भी सदा से, जो दूर रहकर भी सदा से पास मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा। मैं जागता हूँ सो गया या, मैं जागता हूँ सो गया या, ये देखने द्वार पर मेरे सदा दस्तक देता रहा वो देवता, जो गति था मेरी नियति था, जो गति था मेरी नियति था ठीक मुझसा ही मुझे जो करता रहा वो देवता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
चार पंक्तियां और एक छोटा सा गीत निवेदन करने की कोशिश करता हूं।
बहुत अच्छा।
स्वयं की नजर में सफाई दिखेगी, बुराई भी हमको भलाई दिखेगी, स्वयं की नजर में सफाई दिखेगी, बुराई भी हमको भलाई दिखेगी, सदा दूसरों की नजर से निहारो, सदा दूसरों की नजर से निहारो, बिना आईने के सच्चाई दिखेगी, बिना आईने के सच्चाई दिखेगी।
और एक 10 पंक्तियों का छोटा सा गीत निवेदन।
आप जरूर स्वागत है हेमंत।
कैसा बैर कहाँ के बेरी, कैसा बैर कहाँ के बेरी आपस में मत खार करो, कैसा बैर कहाँ के बेरी आपस में मत खार करो, जाने कब छल जाए उमरिया पल दो पल तो प्यार, कैसा बैर कहाँ के बेरी आपस में मत खार करू, जाने कब छल जाए उमरिया, पल दो प्यार करू, कितना